नमस्कार भारत, सोमवार 5 अक्टूबर, मैं हूं वंदना। सीरिया में राष्ट्रपति असद ने कहा, रूस ईरान इराक गठबंधन का सफल होना जरूरी, वरना मध्य पूर्व में होगी बर्बादी। वायुसेना में काम करने वाले और दादरी में मारे गए अखलाक अहमद के बेटे क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में?
उन लोगों के खिलाफ तो मेरा नजरिया बदला है जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ये मेरा मुल्क है और इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं अपने देश की दया यही करता रहूंगा।
जानेंगे ओवैसी बंधुओं को लेकर बिहारी वोटरों की राय।
वो एक बहुत अच्छी पार्टी है और वो हमेशा मुसलमानों और अच्छे कामों के लिए वो लड़ते हैं।
वो अगर जीत जाते हैं तो हमारे बिहार में उनकी कम नजर पड़ेगी, हैदराबाद में ज्यादा पड़ेगी।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया में रूस की कार्रवाई को दखलंदाजी करार दिया है। साथ ही उन्होंने अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सीरिया और इराक में हो रहे उसके हवाई हमलों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इन हमलों से सिर्फ चरमपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में असद ने कहा कि सीरिया, रूस, ईरान और इराक चरमपंथ के खिलाफ एकजुट हैं और व्यावहारिक नतीजे हासिल करेंगे। मेडिकल चैरिटी मेडिकल साइंस फ्रंटियर्स MSF ने अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में एक अस्पताल पर हुए हवाई हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। MSF ने कहा कि वो इसे युद्ध अपराध का मामला मानती है। MSF ने इसके लिए अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में करीब 22 लोग मारे गए थे, जिसमें MSF के 12 लोग थे। हालांकि अमरीकी सेना का कहना है कि वो मामले की जाँच कर रही है। दक्षिण अमरीकी देश ग्वाटेमाला में आए भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने का काम अभी भी चल रहा है। वहां मौजूद बचाव कर्मचारी पिछले 3 दिनों से मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैम्ब्रे गांव में हुए इस भूस्खलन के मलबे से अब तक 87 शव निकाले जा चुके हैं और करीब 100 लोग अभी तक गायब हैं। ग्वाटेमाला की आपदा एजेंसी कॉनरेड के प्रमुख अलेजांद्रो मल्डोनाडो ने BBC को बताया कि ये ग्वाटेमाला में आया अब तक का सबसे खतरनाक भूस्खलन था। उन्होंने कहा,
We've had larger landslides, but with not as many houses involved. Usually in rural communities, you have a landslide.
इससे पहले यहाँ बहुत भूस्खलन हुए हैं जो इससे बहुत बड़े थे, लेकिन उनमें इतने घरों को नुकसान नहीं हुआ था। इससे पहले अधिकतर भूस्खलन गाँव में हुए थे जहाँ यहाँ के मुकाबले जनसंख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए ये अब तक का सबसे बड़ा भूस्खलन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ग्वाटेमाला की आपदा एजेंसी कॉनरेड के प्रमुख अलेजांद्रो मल्डोनाडो। गुरुवार को पूर्वी ग्वाटेमाला सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ था। फ़लस्तीनियों और इसराइली सुरक्षा बलों के बीच फिर से झड़पों की खबर है। इसराइल का फ़लस्तीनियों को यरूशलम में ना आने देने के फैसले के बाद ये झड़पें हुईं। खबरों के अनुसार एक फ़लस्तीनी युवा वेस्ट बैंक इलाके में एक चेकपोस्ट पॉइंट पर मारा गया। वहीं गाज़ा की तरफ से इसराइल की तरफ 2 रॉकेट भी दागे गए। इससे पहले इसराइल के 2 नागरिकों की हत्या और 1 के घायल होने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी चरमपंथियों के घरों को जल्द से जल्द तोड़ने के आदेश दिए थे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पेद्रो पासोस कोएल्हो के गठबंधन ने आम चुनावों में जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नई सरकार बनाने की तैयारी हैं में हैं। उन्होंने विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी को हरा दिया, लेकिन संसद में अभी उन्हें बहुमत नहीं मिला है। BBC समाचार।
BBC हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वंदना। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद ने आगाह करते हुए कहा है कि सीरिया, रूस, इराक और ईरान के गठबंधन का कामयाब होना बहुत ही अहम है, वरना समूचा मध्य पूर्व तबाह हो जाएगा। सीरिया में पिछले 4 साल से गृह युद्ध चल रहा है और चरमपंथी गुट IS बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अब तक तो अमरीका के नेतृत्व में कई देश सीरिया में हवाई हमले कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते से रूस ने भी हवाई हमले किए हैं। सीरियाई सरकार ने रूस के हमलों का तो समर्थन किया है, लेकिन IS के खिलाफ अमरीकी हमलों के वो खिलाफ है। उधर कई सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि रूस IS पर नहीं बल्कि असद के खिलाफ लड़ रहे सीरियाई गुटों को निशाना बना रहा है। इस तरह पूरी स्थिति काफी जटिल हो गई है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अमल चौधरी।
اسد نے امریکی نیتتو والے گٹھ بندھن اور سیریا اور عراق میں ہو رہے اس کے ہوائی حملوں کی بھی آلوچنا کی۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے صرف چرم پنتھ کو بڑھاوا مل رہا ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا،
دس کوالیشن ہیز ٹو سکسیڈ، ادروائز وی ول وٹنس دی ڈسٹرکشن آف دی انٹائر ریجن۔
اگر اس شیتر سے چرم پنتھیوں کو ختم کرنا ہے تو سیریا، روس، ایران اور عراق کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا گٹھ بندھن سفل ہوگا۔ جو دیش آتنکواد کا سمرتھن کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا ان کی مدد بند کر دیں تو ہمیں سفلتا ضرور ملے گی۔ سیریا کے راشٹرپتی بشر الاسد کے شبد۔ اس بیچ روس نے سیریا میں کتھت اسلامک اسٹیٹ کے چرم پنتھیوں پر اور ہوائی حملے کیے ہیں۔ سیریائی وپکشی کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نشانے پر انیہ ودروہی سموہ تھے۔ رویوار کو روس کے رکشا منترالے نے کہا ہے کہ بیتے 24 گھنٹوں کے دوران روس نے سیریا میں اسلامک اسٹیٹ کے 24 ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے ہیں، جن میں کمانڈو چوکیاں، گولہ بارود کے بھنڈار اور وسفوٹک بنانے کے ٹھکانے شامل ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ بدھوار کو شروع ہوئے اپنے ہوائی ابھیان کا وستار کر رہا ہے۔ دوسری طرف ترکی اور بریٹین نے روس کے ہوائی حملوں کی آلوچنا کی ہے۔ لندن میں پردھان منتری ڈیوڈ کیمرن نے بھی کہا ہے کہ روس کی اس کارروائی سے شیتر میں کٹرتا اور آتنکواد کو بڑھاوا ملے گا۔ وہیں ترکی کے راشٹرپتی ریجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ روس جو کر رہا ہے وہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔
اصلا تبی روسیانن شو آندا اتمش اولدو بو آدملار و سوریے دیکی،
روس جو کر رہا ہے وہ خاص کر ترکی کو نامنظور ہے۔ یہ بات میں نے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن کو کچھ دن پہلے فون پر ہماری بات ہوئی تھی، تب بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اس سے وہ خود کو حاشیے پر پائیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ ترکی کے ورودھ کے باوجود ایسا کر رہے ہیں اور یہی ہماری چنتا ہے۔ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوان۔ اسد کے انتراشٹریہ ورودھیوں کا کہنا ہے کہ سیریا میں 4 سال سے چل رہے گرہ یدھ کے خاتمے کے لیے اسد کا ستہ چھوڑنا ضروری ہے۔ حالانکہ فی الحال کچھ پشچمی دیشوں کا کہنا ہے کہ ستہ پریورتن کال کے دوران وہ پد پر بنے رہ سکتے ہیں۔
سیریا پر جانکاری جٹا کر لائے تھے امل چودھری، اور جیسے ہی آپ نے سماچاروں میں بھی سنا ہوگا، سیریا میں آئی ایس نے پلمائرا کے 2000 سال پرانی عمارت کو اڑا دیا ہے۔ اب رخ بھارت کا۔ نوئیڈا کے دادری علاقے کے بساہڑا گاؤں میں گومانس کھانے کی افواہ کے بعد اخلاق احمد کی موت کو 5 دن گزر چکے ہیں۔ ان کے پریجنوں نے رویوار کو اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے ملاقات کی، لیکن سرکار سے ملے معاوضے اور سرکشا کے آشواسن کے بعد بھی اخلاق کا پریوار گاؤں چھوڑنے کا ارادہ بنا رہا ہے۔ وایو سینا میں کام کرنے والے اخلاق کے بیٹے سرتاج نے ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے سے بات کی، اور واتسلیہ رائے نے پوچھا کہ اس حادثے کے بعد ان کے نظریے میں کتنا بدلاؤ آیا ہے۔
دیکھو، میرا ان لوگوں کے خلاف کا میرا نظریہ بدلا ہے جنہوں نے یہ واردات کو انجام دیا ہے، لیکن یہ میرا ملک ہے اور اس کے پرتی میری ذمہ داری بنتی ہے، اور میں اپنے دیش کی سیوا ایسے ہی کرتا رہوں گا جس سے میں سر پایا ہوں۔ لیکن میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ وہ جو اس میں دوتی ہیں ان کو سب سے سزا دیں۔
میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وایو سینا میں ہیں، وایو سینا نے آپ کو ہر طرح کی مدد کا آشواسن دیا ہے، اسی طرح اتر پردیش سرکار اور باقی سرکاروں سے بھی آپ کو مدد کا بھروسہ ملا ہے، تو یہ مدد کا جو آشواسن ہے، جو مدد آپ کو مل رہی ہے، اس سے آپ کے زخم بھرنے میں کتنی مدد مل رہی ہے؟
دیکھو، ایک ریلیشن، ایک آدمی جو بھر پائی ہے وہ کبھی یہ مدد کا آشواسن کبھی پوری نہیں کر پاتا۔ اس آدمی کی کمی کو پورے نہیں کر پاتا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کے باپ تھا، کسی کا پتی تھا، وہ کمی کبھی کسی کا بیٹا تھا، وہ کمی پوری نہیں کر سکتا ان کے دلوں میں۔ وہ اس کے پیار کی، اس کی ریسپانسبلٹی کی جو ہے بھرپائی کسی کی مدد کے دوارا نہیں ہو سکتی۔
اب آپ کے گاؤں کا ماحول کس طرح کا ہے؟ کیا آپ کا پریوار واپس وہیں رہنا چاہے گا؟
ممکن نہیں ہے یہ ایسا ہونا، پریوار وہیں رہے۔
مطلب آپ گاؤں چھوڑنے کے بارے میں وچار بنا رہے ہیں؟
جی، میں گاؤں چھوڑ کے سب سے پہلے میری بڑے ہونے کے ناطے سب سے پہلے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے پریوار کو پروٹیکشن دوں۔ تو میں سرکشت سمجھتا تھا، وہاں میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ استھان مجھے ابھی سرکشت نہیں لگتا کہ باقی لوگوں کے جانے کا میں جیسا ہو سکتا ہے، تو پہلے ان کو کسی اور سرکشت استھان پر میں رکھوں گا۔
یہ پورا معاملہ جو ہے دیش اور دنیا میں سرخیوں میں ہے، اس کو لے کر قانون ویوستھا پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، देश की छवि पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं?
इससे सरकार को या फिर हर एक आदमी को सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटना ना हो, इस बात की पुष्टि हो, इस बात से इंश्योर करें कि ऐसी घटना ना हो।
क्या आप मानते हैं कि आपके पिता को बचाया जा सकता था?
मैं मानता हूँ कि बचाया जा सकता था, पहले ही वो इस वजह से बचाया जा सकता कि अगर पड़ोसियां सारे पड़ोसी साथ देते तो ये हादसा जो हुआ, मतलब ये जो घटना हुई है, निकल सकती। दूसरा ये है कि अगर पुलिस और थोड़ा पहले पहुंच जाती या फिर उनको अस्पताल में जिस तरीके से मॉब को कंट्रोल करना चाहिए था, उनको सिचुएशन समझ के जल्दी जल्दी रिएक्शन करना था, अगर वो कर देते तो शायद चांस थे कि बच जाते।
आपके जो भाई इस हादसे में घायल हुए थे, अब उनकी क्या स्थिति है?
वो अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, सुधार हुआ है और सुधार होने की उम्मीद है।
मेरा सरताज आपसे आखिरी सवाल है, एक कार्यक्रम में आपने अभी कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप ऐसा मानते हैं? और मानते हैं तो इसकी क्या वजह है?
उसकी वजह ये है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैंने देखा है और मेरा उसको सैल्यूट करने को दिल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि वहाँ मैंने देखा है कोई भी मजहब नहीं है, एक ही मजहब है, वहाँ कोई धर्म नहीं है। अगर किसी को इसे निकाल देखने से क्लियर होने की तो वो हमारी फौज में है।
अखलाक के बेटे सरताज जो कह रहे हैं कि अब उस गाँव में रहना उनके परिवार के लिए मुमकिन नहीं है। बीफ के नाम पर अखलाक अहमद की हत्या भारत के एक गांव में हुई है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इन्हीं जज्बातों को पिरो कर लाए हैं पाकिस्तान से वसीतुल्ला खान अपनी साप्ताहिक डायरी में।
जस्टिस मारकुंडे काटजू बनारस यूनिवर्सिटी में दिन दिहाड़े ये कहना अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं अगर बीफ खाऊं तो कौन रोकेगा मुझे, क्योंकि जस्टिस काटजू बेसादा गाँव के अखलाक अहमद नहीं। शोभा डी धड़ल्ले से बोल सकती हैं कि मैंने अभी अभी बीफ खाया है, आओ मुझे मार डालो, क्योंकि शोभा डी अखलाक अहमद की माँ असगरी नहीं है। लालू यादव सवाल कर सकते हैं कि बीफ और बाकी गोश्त में क्या फर्क है, क्योंकि लालू एहसान जाफरी नहीं। जैसे पाकिस्तान में किसी को भी मारने के लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ऐलान करके भीड़ इकट्ठी हो सकती है कि फलाने ने कुरान की बेहुरमती की, उसी तरह भारत में भी किसी भी मंदिर से ऐलान जंग हो सकता है कि फलाने मोहम्मद सलीम ने गाय के बछड़े की खाल कचरे में फेंकी है, या फलाने फर्नांडिस ने फलाने जीवन राम की लड़की छेड़ दी। जैसे पाकिस्तान में किसी हिंदू को भारतीय जासूस या किसी ईसाई को अंग्रेज की औलाद कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे सब एक हल्का फुल्का मजाक समझते हैं, उसी तरह भारत में किसी मुसलमान को कटवा या पाकिस्तानी कह देने से, या अहमदाबाद के मोहल्ला वटावा को पुलिस रिकॉर्ड में वटावा पाकिस्तान और थाने जिला के मोहल्ले निलास पाड़ा को डाक कर्मचारी की तरफ से छोटा पाकिस्तान कहना और लिखना भी सबको कबूल है। जब हम दूसरा धर्म मानने वालों से सिर्फ इसलिए संपर्क ना रखें कहीं बाकी लोग बुरा ना मान जाएं, तो उसके बाद हमारा मन और दिमाग उन्हीं बाकी लोगों का गुलाम बनता चला जाता है और हमें पता तक नहीं चलता कि हमारी आत्मा और नज़र का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया। मेरे दोस्त गुजरात के एक विशेष पत्रकार राजीव खन्ना बताते हैं कि एक दिन जब वो पुराने अहमदाबाद में खजूर खरीदने जा रहे थे, तो उनके साथ चलने वाला एक अंग्रेजी पत्रकार हैरानी से पूछने लगा, राजीव भाई आप भी खजूर खाते हैं? मैं तो समझता था कि खजूर बस मुसलमान खाते हैं, और किसी के कहने पे किसी की जान लेने का काम तब से शुरू होता है जब किसी के मुंह पे पहला चांटा पड़े और आसपास के लोग इस व्यक्ति की हिमायत इसलिए ना करें क्योंकि उसकी नस्ल धर्म और संस्कृति अलग है। चुनाचे इस बुनियाद पे पहली बार थप्पड़ मारने का हौसला और बढ़ जाता है, और फिर ये हौसला बढ़ते बढ़ते अगली वारदात में दो चाटों और फिर एक चाकू और फिर एक पिस्तौल और फिर भीड़ के हमले और फिर पूरी बस्ती फूंक देने में बदल जाता है, और हम खुद को यही कहते रह जाते हैं कि इतने बड़े देश में अब किस किस घटना को रोएं, और फिर यही छोटी छोटी बातें समाज की माला में पिरोती पिराती इतना बड़ा हार बन जाती हैं जिससे पूरे समाज को फांसी दी जा सकती है। जिसके हाथ में ये रस्सा है, अगर वो इससे हम सबको फांसी ना दे तो ये हमारी कोई अच्छाई नहीं बल्कि उसकी मेहरबानी है। समाज बीफ या सुअर खाने से नहीं, बेहिसी या असंवेदनशीलता के इंजेक्शन से मरता है। खुद की तसल्ली के लिए कारण कोई भी घड़ लें। कारण की बहस अक्सर हत्यारे के काम आती है, मरने वाले को क्या कि वो क्यों मरा।
कैसी लगी आपको वसीतुल्ला खान की ये डायरी, हमें जरूर लिख भेजिएगा। बात अब बिहार की करते हैं। बिहार में चुनाव से पहले रैलियों बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बार ऑल इंडिया मजलिस एतहूद उल मुसलमीन यानी AIMIM ने भी बिहार के सीमांचल में अपना दावा ठोका है। रविवार को किशनगंज में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली की। किशनगंज से आरजू आलम की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल से पहली बार सूबे की राजनीति में दखल देने जा रहे हैदराबाद के राजनीतिक दल AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के कोचाधामन में रैली किया।
बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद सरों और सीनों पे गोलियां चली, ताड़ा में बच्चे जेलों में गए। अरे बताओ आखिर तुम कौन सी तबाही और बर्बादी के इंतजार में हो।
अपने भाषण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने विकास के चुनावी वादों से ज्यादा कौमी मिल्लत पर जोर दिया। सीमांचल से हैदराबाद गए कई युवा ओवैसी से खासे प्रभावित दिखते हैं। हैदराबाद से बीटेक करने वाले अफ़ान जफर बताते हैं,
मैं आज से नहीं, मैं पाँच साल से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जानता हूं और उनकी पार्टी को। वो एक बहुत अच्छी पार्टी है और वो हमेशा मुसलमानों और अच्छे कामों के लिए वो लड़ते हैं।
वहीं इलाके के महिलाओं का कहना है कि जो भी पार्टी महिलाओं के विकास की बात करेगी हम उन्हें ही वोट करेंगे। किशनगंज की रुखसार खान और फरीदा जमाल बताती हैं कि
हम पार्टी उठी तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर जो जिसका भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, अगर वो सरकार हम लोग के साथ दे, हम लोग औरतों का समस्या मतलब दूर करे, समाधान करे, उसका मतलब हम लोग साथ देंगे उस सरकार का, कोई भी सरकार हो, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई हो, स्वास्थ्य के लिए हो, पढ़ाई लिखाई हो, हॉस्पिटल हो, या कोई भी हर चीज़ जिंदगी से जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सब में मतलब वो देखेंगे तो हम लोग भी सरकार का साथ देंगे। जो सरकार औरत का साथ देगी, औरत भी सरकार का साथ देगी।
हालांकि इलाके के कई लोग ओवैसी की पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं। कई इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि साल भर पहले वो और उनकी पार्टी इस इलाके में कहीं नहीं थी, तो एकाएक चुनाव में आना मौका परस्ती है। रैली में आए मशीर रियाज कहते हैं कि
देखिए, वोट तो रही बात के वोट की, तो वोट हम अपने जो शहर में, जो बिहार में जो हमारे पार्टी हैं, हम उन्हीं को देना चाहेंगे। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो हैदराबाद के हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो अगर जीत जाते हैं तो हमारे बिहार में उनकी कम नज़र पड़ेगी, हैदराबाद में ज़्यादा पड़ेगी।
सीमांचली अकबरुद्दीन ओवैसी की भावनाओं से लबरेज भाषण पर तालियां पीटते तो खूब दिखें, लेकिन अब वो उम्मीदवारों से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और उनके जीवन के रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ों के विकास को तरजीह देने की मांग करते हैं। किशनगंज बिहार से BBC हिंदी के लिए आरजू आलम।
तो बिहार के चुनावी समर में ओवैसी बंधुओं की भी दस्तक। उधर सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में संवेदना यात्रा चल रही है और उसके साथ BBC भी तेलंगाना पहुंची है। यहां हमारी मुलाकात महबूब नगर जिले के गांव गुरुराव लिंगमपल्ली में एक ऐसे किसान की पत्नी से हुई जिनकी मौत को 15 दिन ही बीते हैं। ऐसा क्या हुआ कि किसान को कीटनाशक दवा पीनी पड़ी? सुनिए BBC संवाददाता अजय शर्मा की भेजी इस रिपोर्ट में।
तेलंगाना के महबूब नगर जिले के गांव गुरुराव लिंगमपल्ली में जब मैंने अंजम्मा को देखा तो उनके हाथ में 30,000 रुपए के कर्ज का एक पुर्जा था, जिसे देख देख कर उनका मन रोने को हो आता। शायद इस गांव में उनके आंसुओं के पीछे मौजूद दर्द समझने वाला कोई नहीं। वो बताती हैं,
हमारा ये सब मजूरी करके खाने का खेत में कुछ भी नहीं है, सब दवा पानी बारिश से कुछ भी पूरा खराब हो गया हमारे खेत में। बोकर से पड़ा था, हमको तो कुछ नहीं बताया, घर में ऐसा मैं करता है वैसा नहीं करता है, कुछ नहीं बताया हमको।
नहीं, उन्होंने क्या किया?
दवा पी ली।
कौन सी दवा?
वो कीड़े के दवा, 10 दिन में बाद में और गया जीव नहीं है उसको। फिर लाए, आज को 15 दिन हो गया उसका मौत हो गई।
3 बेटों और एक लड़की की माँ अंजम्मा का परिवार कभी खुद काश्तकार था, अब वो काश्तकार से मजदूर में बदल चुके हैं। अंजम्मा का एक लड़का और लड़की शादीशुदा हैं। 2 बेटे हैदराबाद में एक मार्केट और चाय की दुकान पर काम करके जो कमाते हैं अपनी माँ को सौंप देते हैं, मगर वो इतना नहीं कि घर का खर्च चल सके। गांव में मांगने से भी कोई कुछ देने को तैयार नहीं
है। हालत में पूरा कापूस पूरा घास में गए,
कपास यानी
कपास अदान भी पूरा निकल गया, कुछ भी नहीं, पूरा सूख गया।
महबूब नगर के मागानूर मंडल के इस गांव में आकर मुझे लगा कि एल्लप्पा की खुदकुशी से बाकी गांव को कोई खास हमदर्दी नहीं, सिवाय उनके दोस्त महादेव के। महादेव कहते हैं कि उनके दोस्त की जान सूखे के बाद लिए गए कर्ज से गई है।
टोटल फ्रेंड ले लिया 1,70,000 डेबिट्स, 10,000 ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स अप एंड अदर 30,000 इन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स अप एंड 50,000 इन रायचूर में ये मार्केट यार्ड का में लिया।
हालांकि सरकारी कायदा है कि किसान की खुदकुशी की हालत में कृषि अधिकारी और मंडल राजस्व अधिकारी को आकर किसान के परिवार से मिलना होता है, पर एल्लप्पा की खुदकुशी के बाद केवल एक पुलिसकर्मी आया। केस दर्ज हुआ पर फिर किसी ने उनके घर में झांकने की जरूरत नहीं समझी। अजय शर्मा, BBC, गांव गुरुराव लिंगमपल्ली, जिला महबूबनगर, तेलंगाना।
किसानों के हालत के बारे में ऐसी और भी रिपोर्टें आपको आने वाले दिनों में हम सुनवाएंगे। और अब एक नज़र उन खबरों पर जो आज रह सकती हैं सुर्खियों में।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल आज तीसरी इंडो जर्मन अंतरदेशीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। मर्केल के साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी आए हैं, जिसमें विदेश मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री और आर्थिक सहयोग मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय बिजनेस प्रतिनिधि मंडल भी जर्मन चांसलर के साथ आया है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बीफ पर हाईकोर्ट के दो अलग अलग आदेशों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की जम्मू बेंच ने 8 सितंबर को पुलिस को बीफ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा था। वहीं एक सप्ताह बाद हाईकोर्ट की श्रीनगर बेंच ने राज्य सरकार को एक याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया था, जिसमें गौवंश के जानवरों की हत्या करने पर रोक हटाने की मांग की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बेस रेट में 40 बेसिस अंकों की कमी की घोषणा की थी, जो आज से लागू होगी। ये बेस रेट अब 9.3% हो गया है। बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में बेस रेट में और अधिक कटौती मुमकिन है। राधेमा ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अपील दाखिल की थी, जिसकी आज सुनवाई होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राधेमा को अस्थायी राहत देते हुए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कटक के बाराबत्ती स्टेडियम में ये मैच दोपहर 2:30 से शुरू होगा। इस सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी।
और अब खेल की खबरें। जैसा कि आपने अभी सुना, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक में दूसरा मैच खेला जाएगा। पिछला मैच भारत हार गया था। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने पूर्व क्रिकेटर मदन लाल से बात की और भारत की जीत की संभावनाओं के बारे में सवाल किया।
देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम जो है बहुत ही बेहतरीन टीम है, अच्छी टीम है, और भारत ने अगर इनसे जीतना है तो इनके खिलाफ तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पर ये देखिए, भारत ने 200 रन बनाए थे 2020 ओवर में। जब अगर कोई 200 रन बनाता तो यही आशा होती है कि मैच जीत जाएंगे। पर मैच इसलिए नहीं जीते क्योंकि हमारे जो दो स्पिनर हैं उनका 8 ओवर का जो स्पेल है वो अच्छा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विकेट इतने ज्यादा सीधे हैं जो हमारे 3-4 मीडियम पेसर हैं। हो सकता है कि उनको विकेट मिल जाए, पर उनको मार पड़ने के बहुत ज्यादा चांस होता है। तो ये थोड़ा सा टीम को देखना पड़ेगा।
क्या आपको लगता है कि अमित मिश्रा या हरभजन सिंह को मौका दिया जा सकता है?
हाँ, देखिए, मैं इस हक में हूँ, दिया जा सकता था। सबसे पहले कि एक तो दोनों एक्सपीरियंस बॉलर हैं, क्योंकि मिश्रा एक लेग स्पिनर है, उसको हिट करना इतना आसान नहीं है, और वो IPL खेलता है और उसके पास ट्रिक है। मेरे विचार में अमित मिश्रा को खुलाना जरूरी था लास्ट मैच में, पर यह है कि कैप्टन की सोच है अपनी। कैप्टन ये सोच रहा है कि अक्षर पटेल जो है वो आके बैटिंग करेंगे, हमें मैच जिता देंगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि 2020 में 7-8 तक बैटिंग आती है, उसके बाद आती नहीं। धोनी के बाद तो बैटिंग आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने जबरदस्त हमारी बैटिंग लाइनअप है।
तो आज नजर रहेगी भारत के दूसरे मैच पर। उधर कल शशांक मनोहर BCCI के अध्यक्ष चुने गए। नई पारी में उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, जानते हैं आदेश कुमार गुप्त से।
कल मुंबई में BCCI की बैठक हुई और उम्मीदों के अनुरूप शशांक मनोहर को एक बार फिर बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया। पिछले महीने ही जगमोहन डालमिया का निधन हुआ था, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर नए अध्यक्ष का चुनाव कराना आवश्यक था। शशांक मनोहर इससे पहले साल 2008 से लेकर साल 2011 तक भी BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जिन्हें लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं।
पहला सवाल तो ये है कि आईसीसी में अभी भी ये एन श्रीनिवासन को नॉमिनेट करके रखेंगे या नहीं आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए, क्योंकि श्रीनिवासन और शशांक मनोहर की बिल्कुल बनती नहीं है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि आने वाले जून में श्रीनिवासन का टर्म एक्सपायर होता है, तो शायद बीसीसीआई ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जहां से कुछ क्रिटिसिज्म हो या प्रेस्टीज कम हो जाए बीसीसीआई की। दूसरी बात यह है कि राइट्स काफी आने वाले हैं ऊपर, टेलीविजन राइट रिन्यूअल के लिए या फिर ऑक्शन के लिए, जिनमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है वो है आईपीएल के राइट, क्योंकि 10 साल जो अब तक दिखाए गए थे वो अब 2017 में उनका टर्म खत्म होता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको इसलिए आगे किया गया है, जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा जो सेक्रेटरी है बोर्ड के, वी वॉन्ट स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। एक तो ये है कि बड़ा अनस्टेबल सा मामला रहा है जब से 2013 में आईपीएल में स्कैम आया था, और क्रेडिबिलिटी काफी इरोड हो गई है। हालांकि पैसे बहुत कमाए बीसीसीआई ने, लेकिन प्रेस्टीज काफी कम हो गई थी। तो ये दोनों चीजें संभालते हुए शशांक मनोहर को आगे बढ़ना पड़ेगा।
वैसे खुद शशांक मनोहर ने माना कि उनकी प्राथमिकता क्रिकेट की छवि सुधारना है, लेकिन जैसे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, वैसे ही शायद इस बार उनकी दूसरी पारी इतनी आसान ना हो।
तो खेल की खबरों के बाद अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का, और अमल तैयार है अखबारों के साथ।
जी, अगर आज के अखबारों पे नज़र डालें तो सभी अखबारों में दादरी हत्याकांड और शशांक मनोहर को जो बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया है उसी की खबरें हैं। अंग्रेज़ी अखबारों की बात करें तो द हिंदू ने लिखा है कि अल्पसंख्यकों के पैनल ने दादरी हत्याकांड में नोटिस भेजा। इसमें अखबार के अनुसार पैनल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है कि अखलाक का आखिरी कॉल एक हिंदू दोस्त को थी, उन्होंने अपने एक हिंदू मित्र को सबसे जो आखिरी कॉल किया था अपने एक दोस्त को किया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि दादरी में मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी भाजपा विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर बेगुनाहों को फंसाया गया तो वो करारा जवाब देंगे। यहाँ एक्सप्रेस जी ये विधायक हैं संगीत सोम, और इन पे
काफी विवादित रहे हैं और
मुजफ्फरनगर में विवादित बयान देने का इन पे आरोप भी रहा है, और एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो करारा जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है कि भाजपा नेता ने कहा कि यूपी सरकार गाय हत्यारों को बचा रही, और यहाँ पे भी वो इन्हीं की बात कर रहे हैं, संगीत सोम की बात कर रहे हैं। और अगर शशांक मनोहर की बात करें तो उसमें सभी लगभग अखबारों ने एक ही जैसा शीर्षक दिया है कि वो बीसीसीआई की सफाई की बात कर रहे हैं, वो सभी अखबारों में एक ही जैसा है लगभग। और अगर हिंदी अखबारों का रुख करें तो यहाँ भी लगभग सभी अखबारों में दादरी कांड को ही प्रमुखता से लिया गया है, जिसमें एनबीटी और अमर उजाला ने लिखा है कि माहौल गरमाने की बात की है, और हिंदुस्तान हिंदी और इन्होंने लिखा है कि मुआवजे की बात की है, जिसमें 35 लाख का मुआवजा इनके परिजनों को दिया गया है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है आज ज़्यादातर दादरी की ही
जी हर तरफ वहीं पे हैं, वहाँ पे सारी हैं, और इसके
जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, और इसके अलावा कि बजट की जो आयकर की जो छूट सीमा है उस पर भी लेके अगले बजट में कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं,
अभी से उम्मीद है।
जी अभी से उम्मीद
इसमें
जी बिल्कुल इसमें आकर ऐसा आया है। और सेंट्रल स्कूल की जो परीक्षा थी उसका पेपर लीक होने की वजह से उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है, ये अखबार ये खबरें भी काफ़ी प्रमुखता से हैं हर अखबार में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमल इन समीक्षा के लिए। और अब सुन लेते हैं प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया में रूस की कार्रवाई को दखलंदाजी करार दिया है। साथ ही उन्होंने अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सीरिया और इराक में हो रहे हवाई हमलों की भी आलोचना की है। मेडिकल चैरिटी मेडिकल साइंस फ्रॉन्टियर्स MSF ने अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में एक अस्पताल पर हुए हवाई हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। दक्षिण अमरीकी देश ग्वाटेमाला में आए भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने का काम अभी भी चल रहा है। वहां मौजूद बचावकर्मी पिछले 3 दिनों से मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फ़लस्तीनियों और इसराइली सुरक्षा बलों के बीच फिर से झड़पों की खबर है। इसराइल का फ़लस्तीनियों को यरूशलम में ना आने देने के फैसले के बाद ये झड़पें हुईं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद्रो पासोस कोएल्हो ने गठबंधन के आम चुनावों में जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नई सरकार बनाने को तैयार हैं। बीबीसी समाचार।
जी तो कार्यक्रम नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद। तब तक सभी साथियों के साथ मुझे वंदना को दीजिए अनुमति।